आज हमारी खास मेहमान हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गुरप्रीत गंडा, जो सिडनी में अपनी निजी प्रैक्टिस चलाती हैं और मानसिक विकारों का निदान और उपचार करती हैं। आज मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गंडा अक्षमता के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालेंगी। नमस्कार डॉक्टर गुरप्रीत, स्वागत है आपका SBS हिंदी पर। डॉक्टर, सबसे पहले तो आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी और फिर आपसे जानना चाहूँगी कि साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक की भूमिका दिव्यांग लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसे कारगर है, किस तरह से इफेक्टिव है।
देखो प्रीति, जो हम जैसे डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंट तरीके की जैसे डिसेबिलिटी है कि फिजिकल यानी शारीरिक या मानसिक, या हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखते हैं। तो देखा गया है कि जो डिसेबल पॉपुलेशन है वो बहुत वल्नरेबल है, यानी इनमें जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक ये इश्यूज फेस करते हैं, तो उनको सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो जो साइकोलॉजिस्ट का रोल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनकी सोशल सपोर्ट, इनके स्टेबलाइजेशन, के ये अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ठीक से अपनी इमोशंस को ढंग से काबू में रखते हुए, मैनेज करते हुए अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बतीत कर सकें।
तो डॉक्टर, समाज की सोच बदलने और जागरूकता बढ़ाने के संबंध में आपने दिव्यांगता के क्षेत्र में क्या बदलाव देखे हैं, खासकर हमारी भारतीय कम्युनिटी में जहां अभी भी इसके बारे में खुलकर बात करने में लोग संकोच करते हैं?
हाँ, देखो, देखा गया है कि संकोच होता है, काफी बताना नहीं चाहते, शर्म करते हैं, या उसको ऐसे ही कि कोई बात नहीं ऐसे करके ले लेते हैं। पर जैसे ही अभी हमने देखा कि NDIS भी आया, बहुत सारी उसमें भी राइट्स भी डिस्कस करे कि हमने दूसरों के राइट्स के बारे में, अभी सोशल मीडिया भी देख रहे हैं उसमें भी बहुत सारे उसके पॉजिटिव इम्प्लिकेशंस भी हैं, बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में। तो कि बेशक उनमें कुछ डिसेबिलिटीज हैं पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें और हमारे में बिल्कुल सिमिलैरिटीज भी हैं, तो वैसे ही उनकी इमोशंस हैं, वैसे ही उनकी फीलिंग्स हैं, तो उनके भी वैसी सोच होती है, तो हमने उनके राइट्स को कि एक उनकी इंडिविजुअलिटी, एक उनकी आइडेंटिटी है उनकी, तो उसको हमने पूरा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हुए उनको मेंटेन करना है, और उनको जो भी सुविधा चाहिए हमने वो देनी है। तो समाज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, हमने ये अवेयरनेस और बढ़ानी है ताकि हम ये अपने भाई बहनों तक जो भी सहूलतें हैं ये पहुंचा सकें।
आपने पहले कहा कि उनकी भी हमारी जैसे सोच है, हमारी जैसे समझ है, हमारी तरह फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फिर भी विकलांगता से जुड़े भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन के बहुत मुद्दे हैं और उस पर हम बात करते हैं। आज के दिन में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है ताकि दिव्यांग लोग भी आर्थिक या सामाजिक विकास में बेहतर भागीदारी कर सकें?
देखो, डिस्क्रिमिनेशन तो हम देखते हैं जैसे कि मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, सुनने को मिलता है कि क्योंकि उनमें ये डिसेबिलिटी है उनको आगे प्रमोशन नहीं मिली या जॉब नहीं मिली या उन्होंने जॉब अप्लाई करी। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम ये इनको इंक्लूड करें, इम्पॉर्टेंट है कि जो वर्क प्लेसेस हैं वो इम्प्लॉय करें, वो इस बात को नहीं कि हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत सारे हम जहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बिग एम्प्लॉयर्स हैं वो इंक्लूड कर भी रहे हैं, तो हमें चाहिए कि किसी तरीके से हम इनको भी अपने जैसे जॉब्स में अब्सॉर्ब करें, ताकि ये ना हो कि बहुत सारे वो जो खाली के पेमेंट्स में नहीं रहना चाहते, वो खुद अपना एक कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो इस चीज़ में हमने हेल्प करनी है। तो अगर हम इनको एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो How will they feel that? वो कैसे उनको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी? तो ये मेरा ख्याल है कि हमें बहुत अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो मिलके अगर कम्युनिटी में हम ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और हम इनको इंक्लूड करते हैं, जॉब्स देते हैं, तो उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा।
मैं पूछना चाहती थी कि आप हर रोज मेंटल हेल्थ के मुद्दों से डील करती हैं, डिसेबिलिटी काउंसलिंग करती हैं, आपको लगता है कि समुदाय में लोग किसी हद तक इसके इलाज में आपकी मदद कर सकते हैं, चाहे अपने रवैये में बदलाव से या सही समय पर काउंसलिंग दिलवाकर या किसी और तरीके से? मेंटल हेल्थ के लिए कम्युनिटी और कनेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है?
देखो, जैसे आपने कहा, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मैं NDIS के थ्रू भी देखती हूँ, जैसे कि डिसेबिलिटी सपोर्ट पेमेंट्स होती हैं, बहुत सारे सेंट्रल के ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, तो बिल्कुल उनको, उनकी भी जो सेल्फ एस्टीम है, उनको भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं. तो हम एज अ कम्युनिटी, एक तो हम देख रहे हैं कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है आजकल, कि हम जैसे कि इसको क्या पता होगा, इनको कैसे पता होगा, हम अंडरमाइन करते हैं, हम उनको एक सोचते हैं कि इनको कम पावर है इनमें. तो इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना चाहिए कि हम जिस एज में रह रहे हैं उनमें भी इतनी ही क्षमता है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं. तो हमने उनको क्या चाहिए, उनके क्या गोल्स हैं, उनको पूछना है, ना कि मुझे लगता होगा ये चाहिए वो दे दिया जाए. तो इस चीज के लिए कि उनकी जो नीड्स हैं, उन पे भी जरूरतें हैं, उन पे फोकस किया जाए, उनको किसी भी तरीके से छोटा ना समझा जाए, उनको भी एक इंसान की तरह, ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए, कि किसी भी इंसान के जैसे जरूरतें हैं, नीड्स हैं, राइट्स हैं, वैसे ही उनके भी हैं. उनको बिल्कुल इंक्लूड करके उसी लेवल से उनको अगर बात किया जाए और चीज की खूब अवेयरनेस भी बढ़ाई जाए तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा.
डॉक्टर, कोविड के चलते बहुत सारी चिंताएं पैदा हुई हैं. महामारी के समय जिन लोगों को पहले से ही कोई अक्षमता थी, जैसे कि व्हीलचेयर की ज़रूरत या दिखाई सुनाई ना देना, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या आपको अपने प्रोफेशन में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
देखिए प्रीति, जो जो इस कोविड का और पेंडेमिक के लॉकडाउन का इम्पैक्ट हुआ है वो बिल्कुल ओवरऑल हुआ है, पर देखा गया है चूंकि ये जैसे डिसेबल जो हमारे भाई बहन हैं वो वल्नरेबल हैं, तो उनमें हमें इसका जो असर है वो ज़्यादा देखा गया. जैसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं, अब डिसेबिलिटी के कारण जैसे वो बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे थे, कम्युनिटी के प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे थे, लॉकडाउन के दौरान वो जो प्रोग्राम्स वो बंद हो गए. तो उनका एक जो रूटीन होता था कि इतने बजे जाना है, ये क्लास अटेंड करनी है, वो सब डिस्टर्ब हो गया. और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अपने सेशंस भी नहीं कर पाए क्योंकि वो घर में हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन वो नहीं करना चाहते थे. तो उसके कारण से वो जो उदासी है, अब फिजिकल एक्टिविटी, अभी देखा गया कि डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमिटर्स जो हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं वो उनका जो सोर्स है बहुत सारी, जैसे फिजिकल एक्टिविटी करें तो सेरोटोनिन रिलीज होता है जिससे कि हमारा मूड खुश रहता है. तो लोगों को मिले जुले उससे एक केमिकल रिलीज होता है, उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जिससे कि हमें बहुत प्यार और बढ़ता है, खुशी बढ़ती है. अब जब हम लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये देखा गया कि वो सिम्टम्स बढ़ गई, ये सप्लाई जो है वो कम हो गई और उदासी जो है बढ़ गई या घबराहट भी बढ़ गई. तो जैसे मैं अपने क्लाइंट की बात कर रही थी, तो उनको फिर वापस हमें वही एक रूटीन जो है हमें वापस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस जैसे उनकी लाइफ एक चल रही थी वो चलती रहे, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जो कि उनको उनकी मानसिक जो है संतुलन है उसमें भी हेल्प करे.
डॉक्टर, कोविड के दौर में एक नया शब्द बहुत बार सुना जा रहा है जिसे कह रहे हैं शैडो पैंडेमिक. इसके बारे में जरा हमें बताएं कि क्या है और ये विकलांग डिसेबल लोगों पर क्या असर करता है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है?
I know it's interesting, है ना, shadow pandemic. तो देखो, क्योंकि जो एक पेंडेमिक है तो उसके चलते अंदर ही अंदर परिवारों में, लोगों में क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, देखा गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बढ़ गई, देखा गया है कि एडिक्शन बढ़ गई। तो अब आप सोचें कि जो जो ज्यादा जो कह लो कि वल्नरेबल होंगे तो उनको इजिली उनके ऊपर जो भी है यू नो अपना पावर को हम जता सकते हैं, तो देखा गया कि इनमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स वो बढ़ गई, वो उदासी बढ़ गई, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से लेट्स से के घर में कुछ अग्रेशन हो गया, कोई ड्रिंक कर रहा है, उसका जो गुस्सा है इन पे निकल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, लोगों की जॉब्स चली गई। सो दैट वाज अ शैडो पेंडेमिक एंड इसका जो इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे है वो बहुत लंबे टाइम तक कह रहे हैं कि चलेगा और उसके लिए हमें बहुत सारी हेल्प की जरूरत है। तो इस टाइम पे हमें ये अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी और हेल्प करनी, जितने भी हम रिसोर्सेज मिलके इस चीज को डील करें वो बहुत ही जरूरी है इस टाइम पे। थैंक्स प्रीति।
तो डॉक्टर मेरा आखिरी सवाल ये है कि रिसोर्सेज से कि आपने अभी बात की और आप इतने सालों से मेंटल हेल्थ के फील्ड से जुड़ी भी हुई हैं, आपके हिसाब से इतने सालों में आजकल डिसेबल्ड या दिव्यांग लोगों के लिए कम्युनिटी रिसोर्सेज अधिक सुलभ या एक्सेसिबल या समावेशी इंक्लूसिव होते जा रहे हैं, आज के दिन में लोग कैसे मेंटल हेल्थ सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए रिसोर्सेज मुझे लग रहा है बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो जैसे हम देखते हैं कि व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी, जैसे हम कार पार्क भी रखते हैं डिसेबल्ड के लिए, तो उस चीजों का जो ये फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, तो कम्युनिटी में एक्सेसिबिलिटी पर जैसे हमें अब अपनी साइकोलॉजी प्रैक्टिस की बात करें, हम भी जैसे टेक्निक्स यूज करते हैं, तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसमें कि EMDR बोलते हैं उसको, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजिंग रीप्रोसेसिंग। तो उसमें होता है कि आई मूवमेंट क्रिएट करनी होती है, तो हम अगर सोचें कि वो खाली जो जो देख नहीं सकता उसके लिए कैसे करेंगे, तो क्या होता है कि हमें ब्रेन की स्टिमुलेशन करनी होती है लेफ्ट एंड राइट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वी आर कमिंग विद रिसोर्सेज जिससे कि हम टेक्चुअल जैसे कि स्किन के साथ कि हम टैप करके वो ही स्टिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, या साउंड से क्रिएट कर सकते हैं, तो बेशक कोई ब्लाइंड है या कोई सुन नहीं सकता है हम वही टेक्निक उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो आ रही हैं और इनके लिए टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज बन रहे हैं, तो डेफिनेटली थिंग्स आर इम्प्रूविंग, रिसर्च इज इम्प्रूविंग, टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग, बिल्कुल उसमें फर्क पड़ रहा है।
डॉक्टर गंडा, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इस विषय में हम जितनी भी बातचीत कर सकें वे कम है, तो इस मुद्दे को लेकर आपसे आगे चलकर फिर से मुलाकात करेंगे, पर तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉडकास्ट सीरीज स्पीक माई लैंग्वेज के समर्थन से बनाया गया है। स्पीक माई लैंग्वेज कॉमनवेल्थ के समाज सेवा विभाग द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसे पूरे ऑस्ट्रेलिया में सभी राज्य और उपराज्यों की संजातीय और बहुसांस्कृतिक समुदाय परिषदों के बीच साझेदारी के माध्यम से गर्व से SPS के जरिए वितरित किया जा रहा है।